الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हमने किताब सुलूक और एहसान पढ़ना शुरू किया हुआ है। तसहील बहश्ती जेवर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की असलन जो किताब थी बहश्ती जेवर थी, फिर उसके ऊपर जामत रशीद कराची वालों ने तसहील लिखी, यानी उसको थोड़ा आसान उर्दू ज़ुबान के अंदर और जो दौर हाजिर के मसाइल हैं उनको बहश्ती जेवर में शामिल करके तसहील बहश्ती जेवर के नाम से किताब शाया करी। तो उसमें किताब उस सुलूक और एहसान में अखलाक जमीमा और उनका इलाज का मौजू हम पढ़ रहे हैं। तो तमहीद हमने जो थानवी रहमतुल्लाह अलैह की थी वो पिछली क्लास में पढ़ के मुकम्मल कर ली थी कि जो अखलाक जमीमा होते हैं तो इनकी बहुत कम लोग फिक्र किया करते हैं। ज़ाहरी अमाल की तो फिर भी कुछ लोगों को फिक्र हो जाती है, लेकिन अखलाक की फिक्र जो है वो बहुत कम लोगों को होती है। तो इसका जो है वो हमारी दीन के अंदर बहुत ज़्यादा यानी इसकी अहमियत है, तो हमें भी इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। यानी बेसिकली ज़ाहरी के बाद ज़ाहरी से ज़्यादा जो है वो बातनी कैफियात की अहमियत है। ठीक है, तो ये सारी तमहीद वगैरह पढ़ के अब जो है वो हजरत ने कुछ अखलाक जमीमा जो है ना वो बाकायदा उनवानात डाल करके उनके बारे में अलग अलग बयान किया है। ठीक है, यानी हेडिंग्स लगाई हैं कुछ अखलाक जमीमा की, यानी बुरे अखलाक की। और ये जो अखलाक जमीमा की हजरत ने हेडिंग्स लगाई हैं ना, ये यानी इनको देख करके ऐसा लगता है कि हजरत ने ना बहुत ही अवामी लेवल के ऊपर, अवाम उन्नास के लेवल पे, बल्कि अवाम उन्नास में से भी जो खवातीन हैं, तो खवातीन के गोया के जहनी इस्तेताआत और खवातीन से मुताल्लिक जो ज़्यादा अखलाक जमीमा होते हैं उनका जिक्र किया है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं यहाँ पे किया जैसे कि तसव्वुफ के मशायख जो हैं वो जिस तरीके से रूहानी बीमारियों का जिक्र करते हैं। ठीक है, और वो जिस तरीके से जो है वो यानी बातनी अमराज का जिक्र करते हैं, रूहानी बीमारियों का जिक्र करते हैं, तो उस अंदाज में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे तज़किरा नहीं किया है, बल्कि बहुत ही सादा सिंपल अवामी लेवल के ऊपर जाके इस तरह से बातें करी हैं। तो सो पहली हेडिंग, पहला उनवान जो हजरत ने बांधा वो है ज्यादा खाने की हिर्स और उसका इलाज। ठीक है, यानी कुछ लोगों को हिर्स जो लगी होती है ज्यादा खाने की लगी होती है। अब हिर्स जो है वो लालच के मानी में आता है। ठीक है, लालच का लफ्ज़ जो है वो ज्यादा आम है, उर्दू जुबान में इस्तेमाल होता है, यानी चीज़ों को हासिल करने की जो एक दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई भी होती है ना, बस मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, तो उसको हिर्स और लालच कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो इसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या है, यानी एक बड़ा ही इस्तेलाही जो वर्ड होता है इसके लिए वो है शहवत। शहवत, ठीक है, लेकिन शहवत को जो लफ्ज जब इंसान सुनता है ना तो उसके जहन में एक दूसरी किस्म की हिर्स और लालच आती है जो कि ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो हजरत ने यहाँ पे शहवत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो वाला जो मसला होता है वो ज्यादातर उसका ताल्लुक मर्दों के साथ होता है, औरतों के साथ इतना उसका मसला होता नहीं है कि उनको जो है वो दूसरे जिन्स यानी मर्दों की जो है वो शदीद किस्म की जो है वो हिर्स हो, लालच हो, ऐसा नहीं होता उनके अंदर। ठीक है, जिन्सी जो जिसको जिसको शहवत कहते हैं, तो हजरत ने ना यहाँ पर उसका जिक्र नहीं किया बल्कि हजरत ने यहाँ पर ज्यादा खाने की हिर्स ठीक है, खाना पीना बस ज्यादा बटोर, जिसको क्या कहते हैं चटोरापन जिसको कहते हैं आम जुबान में, ठीक है, तो उसका जिक्र किया हजरत ने। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसका वास्ता जो है वो औरतों को भी बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है, के खाने की एक लत लगी हुई होती है, चटोरापन चटखारापन, कभी ये खा रही है कभी वो खा रही है, और हर वक्त जो है वो खाने की फिक्र पड़ी हुई है, हर वक्त सोच जो है वो खाने की तरफ जा रही है। ठीक है, पकाना एक अलग चीज होती है लेकिन खाना एक अलग चीज होती है। हर पकाने वाला जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो खाए भी, ठीक है, और हर खाने वाला जो है जरूरी नहीं है कि वो पकाए भी, ठीक है। तो पकाना और खाना दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर खाने से का जिक्र हो रहा है, पकाने का जिक्र नहीं हो रहा। तो फरमाते हैं कि बहुत से गुनाह पेट के ज्यादा पालने से होते हैं। पेट पालना यानी पालने का मतलब क्या होता है कि आप किसी का बहुत ज्यादा ख्याल करते रहे, बहुत ज्यादा उसके ऊपर तवज्जो आपकी मरकूज रहे, जैसे बच्चे पालते हैं, ठीक है। तो जो लोग जिनके घर में बच्चे होते हैं तो जाहिर है वो उनकी औलाद होती है, तो वो उनकी तवज्जो अपनी औलाद की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है, मरकूज होती है, तो वो उनकी फिर हर वक्त जो है ना वो उनकी फिक्र करते हैं, उनकी जो है वो उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं, फिक्र करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो गोया के इंसान का पेट जो है ना वो भी उसके लिए औलाद की तरह बन जाता है, कि हर वक्त जो है ना वो उसकी तवज्जो अपने पेट की तरफ मरकूज रहती है और फिक्र रहती है कि अब मैं इसके अंदर क्या डालूं, अब मैं इसको जो है ना वो कैसे भरूं, अब मैं इसकी जो जो ख्वाहिश है उसको कैसे पूरा करूं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेट पालना। तो पेट पालने को अगर समझना है तो औलाद को पालने की मिसाल से इसको समझा जा सकता है कि पेट पालने का क्या मतलब होता है। तो फरमाते हैं कि बहुत से गुनाह पेट के ज्यादा पालने से होते हैं। इसमें कई बातों का ख्याल रखना चाहिए। मजेदार खाने की पाबंदी ना करो, ठीक है, कि बस मैंने मजेदार ही खाना है और जो चीज मुझे मजेदार नहीं लग रही है ना वो मैंने नहीं खानी है, ठीक है, ये ना करो। हाँ, मिल जाए मजेदार खाना तो अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लो, लेकिन ऐसे यानी रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ कि जी बस मजेदार ही मिलना जरूरी है, नहीं मिला तो बस मैंने तूफान खड़ा कर देना। कुछ लोगों को ये बचपन से ये आदत उनके माँ बाप ने डाल दी होती है कि जी जो उनको पसंद है ना बस वही खाना उनको देना है और उसके अलावा उनको नहीं देना, ठीक है ना। ये जो औलाद की इस तरीके से आदतें बिगाड़ देते हैं ना माँ बाप, तो ये उनके साथ कोई भलाई नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उनके लिए आगे के की जिंदगी को बहुत दुश्वार बना रहे होते हैं। क्योंकि ये अम्मा हुजूर जो मजे मजे के खाने बनाने वाली है ना, ये अम्मा सारी जिंदगी उनको नहीं मजे मजे के खाने बना के खिलाती रहेंगी, ना तो वो अम्मा के पास हमेशा रहेंगे। हो सकता है उनको किसी काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से उनको दूर जाना पड़ जाए, अब वहां पर तो अम्मा नहीं होंगी, लेकिन अम्मा ने आदत बिगाड़ दी। अब जब बिगाड़ दी आदत, तो फिर जब ये कुछ किसी ऐसी जगह पे जाएगा जहां पर मजेदार खाने खिलाने वाली अम्मा नहीं होंगी, तो वहां पर ना फिर ये इसकी अपने लिए भी बहुत दुश्वारी हो जाएगी, और हो सकता है कि ये दूसरों के लिए भी दुश्वारी पैदा कर दे, ठीक है, कि क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बना करके मुझे दे सकती, या क्यों, मुझे मजेदार खाने क्यों नहीं मिल सकते। तो अपने लिए तो इसके लिए दुश्वारी होगी, क्योंकि इसके हलक से जो है ना वो बेमजा खाना जो इसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मजेदार नहीं होगा, वो खाना इसके हलक से उतरेगा नहीं, ठीक है। और मजेदार खाने आपको पता है, खवातीन को हमसे ज्यादा इस बात का पता है कि मजेदार खाना बनाने के लिए उसके अंदर फिर बहुत कुछ डालना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा तलना पड़ता है। जितना डीप फ्राइड खाना होगा, जितना डीप फ्राइड होगा उतना ज्यादा मजेदार होगा, और जितना कम फ्राइड होगा उतना जो है वो कम मजेदार होगा। तो अब आपको पता है कि फ्राइंग किस चीज में होती है, ज्यादातर तेल में ही फ्राइंग होती है, एयर फ्राइंग तो अब शुरू हुई है, वो भी ऑयल फ्राइंग जैसी चीज तो नहीं होती वो, ठीक है। तो जितना तेल में उसको तलेंगे तो उतना फिर उसके अंदर जो है वो यानी टॉक्सिक्स टॉक्सिन्स जो है ना वो उसके अंदर ऐड होंगे। तेल के बारे में तो किसी ने कहा, पता नहीं कितना वो 100% साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं है, कि तेल जो है ना वो एक दफा जब इस्तेमाल हो जाए ना, तो फिर जब दूसरी दफा वो इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर जो है वो कैंसर कॉजिंग चीजें पैदा हो जाती हैं, कैंसर, ठीक है। तो कैंसर के जो रीजन है उनमें से एक बड़ी रीजन ये है कि जो कई दफा तेल इस्तेमाल होता रहता है ना, तो उससे जो है वो कैंसर कॉज होता है। अब आप तस्वर करें कि क्या आप घर के अंदर एक इस्तेमाल के बाद तेल को फेंक सकते हैं? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत ही कोई लाट साहब होंगे, कोई मिलियनेयर होंगे, जो कि पहले इस्तेमाल के बाद तेल को जो है वो दोबारा इस्तेमाल ना करें। ये तो आप घर में भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि बाहर जो तेल में जो चीजें तल करके बेचते हैं, तो वो क्या मतलब हर मरतबा एक नया तेल इस्तेमाल करते हैं? वो तो वही पुराना तेल जो कि एक दफा इस्तेमाल होकर के ठंडा हो गया, फिर उसके बाद दोबारा उसको गर्म कर लिया, उसी के अंदर जो है वो दोबारा तलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कितना ज्यादा कैंसर जो बढ़ गया है, तो वो ऐसे खामखा में तो नहीं बढ़ गया ना, कुछ रीजंस हैं उसकी। उनमें से एक बड़ी रीजन ये भी है कि तली हुई चीजों का जो है ना वो लत लगी हुई होती है, और वो जहां से मिल जाए बस उसको ठूसे बगैर जो है वो चारा नहीं होता, ठीक है। तो मजेदार खाने की जो लत है ना, उसकी वजह से फिर जिस्मानी बीमारियां कितनी शदीद, यानी संजीदा किस्म की, कितनी शदीद जो है वो जानलेवा जिस्मानी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। फिर शुगर, ये जो वाइट शुगर है, सफेद चीनी, इसके बगैर जो है वो आपका कोई मीठा बन नहीं सकता। ये मिठाइयां जितनी होती हैं, जितनी मजेदार किस्म की मिठाइयां होती हैं, ये सारी की सारी व्हाइट शुगर से बनी होती हैं। ये जितने केक होते हैं, ब्राउन शुगर कौन उनके अंदर डालता है, गुड़ कौन उनके अंदर डालता है, सारा व्हाइट शुगर होता है। और ये व्हाइट शुगर जो है ये तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक होता है, तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और ये भी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कैंसर कॉजिंग सेल्स जो होते हैं ना, वो इसके ऊपर पलते हैं। यानी जितना जिस्म के अंदर शुगर आप डालेंगे ना, तो गोया कि आप गिजा प्रोवाइड कर रहे हैं, कैंसर कॉजिंग जो ट्यूमरस सेल्स होते हैं उनको आप गिजा प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप देख लें, चाय पीते हैं तो उसके अंदर है दो दो तीन तीन चम्मच जो है वो शुगर डाल रहे होते हैं, और हर चीज के अंदर शुगर होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मजेदार खाने की वजह से ना, बस जो टेस्ट ग्लैंड जो होते हैं उनको मजा लग गया किसी चीज का, वो मजा जो है वो तली हुई चीजों का लगा हुआ होता है, वो जो है वो यानी मीठी चीजों का मजा लगा हुआ होता है, किसी को बहुत ज्यादा नमक का मजा लगा हुआ होता है। नमक तो, नमक की जो ज्यादा मिकदार होती है, आपको पता है कि इससे ब्लड प्रेशर का ताल्लुक नमक के साथ इतना गहरा है कि जिसको बीपी हो जाता है ना, वो यानी बीपी की बीमारी हो गई, उसको जरा सा उसने नमक चखा और उसका बीपी यूं करके जो है वो शूट होता है ऊपर, तेजी से शूट होता है, 90 के ऊपर पहुंच जाता है और 100 के ऊपर पहुंच जाता है, किसी का जो है वो उससे भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। इसका ताल्लुक नमक के साथ होता है, और नमक का ताल्लुक जो है वो मजे के साथ होता है। नमकीन चीज जो होती है ना, वो बड़ी मजेदार होती है, कभी कुछ कभी तो वो मीठे से भी ज्यादा मजेदार होती है, ठीक है। तो मजेदार खाने की पाबंदी ना करो, सिर्फ रूहानी तौर पर बीमार नहीं होगे, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी शदीद किस्म की बीमारी में मुबतला होगे, ठीक है जी। तो अब इंशाल्लाह आप करेंगी, खुसूसन अपने शोहरों के लिए और अपने घर के जो दूसरे मर्द हैं, तो उनको, अपने बच्चों को ऐसी बुरे अंजाम से बचाने की फिक्र करेंगी, है ना भी? करेंगी ना इंशाल्लाह, हाथ खड़ा करने सारे के सारे, नहीं चले। When you said that a person should quietly eat what's in front of them, I started practicing it before marriage and got used to eating food that lacked good taste in my sisral, alhamdulillah, without any issues. सही है, माशाल्लाह, ठीक है ना। अगर आप घर के अंदर, मैके के अंदर जो है, यानी बल्कि शादी से पहले इस किस्म की प्रैक्टिस हो जाए ना, तो फिर उसके बाद जब दूसरे के घर जाते हैं ना, तो वहां पर तो अपना ट्रेडिशनल खाना मिलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो फिर वहां पर आपके लिए आसानी होगी कि भाई जो मिल रहा है उसको अल्लाह शुक्र करके आप खा लें, ठीक है। तो बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। बेचारी बच्चियां जो हैं वो तो वैसे ही, वो तो पकाने वाली कैटेगरी में आ जाती हैं, तो ज्यादा मसला तो होता है बच्चों को, ठीक है ना। क्योंकि जब वो ससुराल के अंदर जाएंगे या वो उनकी बेगम साहब आएंगी, तो वो तो उनके अम्मा की तरह तो नहीं खाना बना सकती, तो उनके लिए जिंदगी बड़ी खराब हो जाती है। घरों में खामखा के झगड़े भी इसी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि फिर कमेंट्स देते हैं बीवी के खाने के ऊपर, है ना, बहू के खाने के ऊपर जो है वो कमेंट्स पास करते हैं। आगे इंशाल्लाह मिसाली सास का टॉपिक भी आ रहा है, ठीक है ना। तो सास साहिबा जो है वो खूब यानी चुभते हुए रिमार्क्स पास करती हैं बहू के ऊपर, उसको तो खाना बनाने नहीं आता, उसने तो ये नहीं किया, उसने ऐसा नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया, तो फिर जाहिर है फिर दिल खराब होते हैं, कीना और बगुस पैदा होता है, और फिर वो बिलाखिर लड़ाई झगड़े की शक्ल में नजर आना जाहिर होता है, फिर वो लड़ाई झगड़े की शक्ल में। और ये लड़ाई झगड़ा जो है फिर अगर बढ़ जाए तो फिर घर टूट भी जाते हैं। तो हमारे दीन ने जो सिखाया है कि मजेदार खाने की पाबंदी ना कर, ठीक है, हराम रोजी से बचो। हराम रोजी का मतलब कि उसको जो कमाना, जो जो रिस्क कमाया गया है वो शरीयत के खिलाफ ना हो वो तरीका, ठीक है। बेशक आप उससे कितना ही यानी यहाँ पर जो है वो ये नहीं बात हो रही कि चीनी के बगैर खाने से बचो या तेल के बगैर खाने से बचो, नहीं। अगर आप जो है वो बेहतरीन हेल्दी डाइट खा रहे हैं, है ना, बेहतरीन हेल्दी डाइट आप खा रहे हैं, लेकिन वो हेल्दी डाइट जो है वो हराम रिस्क से खरीदी गई है, तो ये रूहानी अमराज का सबब बनेगी। हो सकता है जिस्मानी अमराज का सबब ना बने, क्योंकि हेल्दी डाइट खा रहे हैं, मतलब आप फ्रेश वेजिटेबल्स खा रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बस खा रहे हैं और जो है वो गोश्त कम खा रहे हैं, लेकिन हराम रिस्क से उसको हासिल किया गया। तो बॉडी तो आपकी मजबूत हो सकती है, सेहतमंद हो सकती है, जैसे कि काफिरों की बॉडी सेहतमंद होती है, ठीक है, लेकिन रूहानी तौर पर ये नुकसान का सबब बन रही है और गुनाह इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। इसी वजह से दुनिया में ना ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो 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 नेमतें हमारे ऊपर नाजिल हुई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो उनमें से एक बड़ी नेमत ये भी है कि जो जानवरों का जो जबीहा होकर के जानवर मार्केट में उनका गोश्त आता है ना, तो वो जबीहा जो होता है ना, अगर जबीहा है भी तो वो भी बड़ा मशकूक होता है। मशीन के जरिए से जो है वो इन मुर्गियों को, ये जो हम हर वक्त मुर्गी खाते रहते हैं ना, कुकड़ कुकड़ खाते हैं, चाहे वो ताजिज में जाकर के खाएं, चाहे जो है वो अलबेक का कुकड़ खाएं, चाहे कहीं का भी खाएं, ये सारा का सारा मशीन स्लॉटरिंग हो रही होती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो चिकन है वो हाथ से स्लॉटर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इतनी बड़ी तादाद में यानी करोड़ों रोजाना जो है वो करोड़ों मुर्गियां खाई जाती हैं, तो कौन सा जो है उसको हाथ से दबा किया जा सकता है, ये मशीन के जरिए से दबा हो रहे होते हैं, या जो प्रोसेस होता है वो मैकेनिकल प्रोसेस होता है। बेशक आखिर में जो है ना वो छुरी फेरने वाला जो शख्स है वो खड़ा हुआ वो इंसान हो, लेकिन प्रोसेस जो है ना वो मैकेनिकल प्रोसेस ही होता है, वो पूरा प्लांट होता है जिसके ऊपर ये सारा का सारा चल रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो कितनी मुर्गियां जो है वो जबा होने से पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, किसको क्या पता हो, किसी को नहीं पता कि वो कितना कितनी मुर्गियां दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं आपके जमा करने से पहले, ठीक है। तो झटका जो है वो हम खा रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता, कितनी एहतियात कर लें, सवाए इसके कि आप खुद घर में मुर्गी लेकर के आए फिर मुर्गी को अपने हाथ से जबा करें, आपको नहीं पता कि आपके घर में जो मुर्गी बाजार से आ रही है वो हलाल तरीके से जबा हुई भी थी कि वो हराम तरीके से जबा हुई भी, आपको नहीं पता, और आप ये पता कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। और कितने लोग हैं जिनके लिए मुमकिन है कि घर में मुर्गी ला करके दबा करें, पाकिस्तान में तो चलो ये किसी हद तक मुमकिन भी है, इंडिया में भी मुमकिन होगा, लेकिन जो आप बड़े आप ये मिडिल ईस्ट के अंदर आ जाएं या आप अमेरिका वगैरह चले जाएं, तो घर में मुर्गी लाने का यानी बल्कि यहाँ पर तो कानूनन बैन है, कानूनन जो है वो आप मुर्गी जिंदा खरीद करके जो है वो घर ला करके दबा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दुनिया में निजाम बनाया गया है ताकि जो मुसलमान है ना उनके पेट में हलाल रिस्क जाए ना, हलाल गोश्त जो है ना वो उनके पेट के अंदर जाए ना, ताकि ये कहीं रूहानी तौर पर ज्यादा मजबूत होकर हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए, ठीक है। हद से ज्यादा पेट ना भरो, हद से ज्यादा पेट ना भरो, बल्कि दो चार लुकमे की भूख रख कर खाना छोड़ दो, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो पेट के तीन हिस्से करके वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक के अंदर जो है वो खाना डालो, एक के अंदर जो है वो पानी डालो और तीसरे हिस्से के अंदर हवा, यानी उसको वैक्यूम छोड़ दो, खाली छोड़ दो, ठीक है। तो जो खाने पीने का मुजाहिदा करते हैं तो माशाल्लाह वो फिर इस सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं कि जी 1/3 जो है ना उसको तो खाली रखते हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो अगर ना भी करें तो भी जो है ना वो जिसको कहते हैं ना वो यानी इतना खा लिया कि डकार आने शुरू हो गए, है ना, पूरा जो है ना वो गले तक गोया के भर गया पेट, हलक तक भर गया, तो ये ना करो, ठीक है ना। बस आपकी भूख खत्म हो गई, यानी भूख छोड़ नहीं सकते, यानी भूख रख नहीं सकते, तो कम से कम इतना बस कर लो कि बस भूख मिट गई, खत्म, ठीक है। उसके ऊपर ओवर स्टफिंग ना करो। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, मसलन, ठीक है, यानी मजेदार खाने की पाबंदी नहीं करना, हराम रोजी से बचना और हद से ज्यादा पेट ना भरना, इनमें बहुत सारे फायदे हैं। मसलन दिल साफ रहता है, ठीक है, क्योंकि हराम रोजी खाओगे तो गुनाह होगा और गुनाह का असर जो है वो कल्ब के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम ना कि वो जो कल्ब के ऊपर दाग पड़ते हैं तो वो गुनाह से पड़ते हैं ना, तो वो गुनाह जो है वो हराम खाना भी तो एक गुनाह है ना, ठीक है। तो अगर आप हराम नहीं खाएंगे तो दिल के ऊपर वो वाले दाग नहीं पड़ेंगे, तो दिल साफ रहेगा, जिससे अल्लाह ताला की नेमतों की कदर आती है और इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है। दिल में रिक्कत और नरमी रहती है, जिससे दुआ और जिक्र में लज्जत मालूम होती है, ठीक है। यानी जब रूहानी दिल इंसान का साफ रहता है तो शुक्र की तौफीक मिलती है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने की कैफियत पैदा होती है, और दिल जो है ना वो रिक्कत और नरमी रहती है। ऐसा नहीं होता कि मुसलमानों के कत्लेआम के बारे में सुन रहा है और तस्वीरें भी देख रहा है, वीडियो भी देख रहा है, और उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, बिल्कुल पत्थर दिल, या अपने खानदान के अंदर, अपने घर के अंदर किसी की तकलीफ को देख रहा है, उसको कोई एहसास नहीं हो रहा उसकी तकलीफ के बारे में, ऐसा नहीं होता, बल्कि दिल में रिक्कत और नरमी हो पैदा हो जाती है। और रिक्कत और नरमी जो होती है तो इसका जो असर है ना फिर उसकी इबादतों के ऊपर पड़ता है, ठीक है, दुआ के अंदर और जिक्र के अंदर उसको यानी लुत्फ भी हासिल हो जाता है, और जब लुत्फ हासिल होता है किसी चीज के अंदर तो फिर वो चीज ज्यादा करने का दिल चाहता है, ठीक है ना। जैसे कि खाने ज्यादा खाने का हमें दिल चाहता है क्योंकि हमें खाने के अंदर लुत्फ हासिल हो रहा होता है, तो हमें ज्यादा खाने का दिल चाहता है। उसी तरह जिसका दिल साफ होता है उसको इबादत के अंदर लज्जत महसूस होती है, तो उसको ज्यादा इबादत करने का दिल चाहता है, ठीक है। नफ्स में बड़ाई और सरकशी नहीं पैदा होती, तो पॉजिटिव चीजें पहले जिक्र हो गई, अब नेगेटिव चीज कि जो बड़ाई है, तकब्बुर है और जो रिबेलियसनेस है, सरकशी, तो ये फिर नफ्स में, यानी नफ्स मोटा नहीं होता, नफ्स मजबूत नहीं होता, ठीक है। नफ्स को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है और तकलीफ को देखकर अल्लाह का अजाब याद आ जाता है, ठीक है। यहां पर नफ्स को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है से मुराद ये कि इंसान को इंसान को या तो जिस्मानी तौर पे कोई तकलीफ जब पहुंचती है या इंसान को जहनी तौर पर कोई तकलीफ पहुंचती है, तो उसको इस तकलीफ के नतीजे में अल्लाह का अजाब याद आता है कि अल्लाह इतनी थोड़ी सी तकलीफ जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो फिर जो जहन्नुम का अजाब होगा वहां पर तो अल्लाह ताला, यानी जहन्नुम का अजाब जो है वो जिस्मानी अजाब भी है और वो यानी नफ्सियाती अजाब भी है, ठीक है, नफ्सियाती तौर पर भी वहां पे अजाब हो रहा होगा, वहां पे बाकायदा दिखाया जाएगा कि देखो तुम्हारे साथ जो दूसरे लोग थे ना जिन्होंने अल्लाह के रसूल की बात मान करके जिंदगी गुजारी, देखो देखो कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरे को अच्छी हालत में देख करके आपको फिजिकल तकलीफ नहीं होती, आपके हाथ में दर्द नहीं हो रहा होता, आपके पैर में दर्द नहीं हो रहा होता, बल्कि आपके जहन में, आपके सोचों के अंदर आपको शदीद किस्म की अजियत हो रही होती है कि काश के मैं भी बात मान लेता, है ना। यानी हसरत, अफसोस, यास, डिप्रेशन, ये सारे के सारे नफसियाती अजियतें हैं। तो जहन्नुम के अजाब के अंदर सिर्फ ये नहीं कि जला दिया, काट दिया, मार दिया, डंडे मार दिए, नहीं, बल्कि ऐसे मामलात किए जाएंगे कि जहन्नुमियों की जहनी तौर पर अजियत, शिद्दत की अजियत होगी उनको। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इस वजह से नफ्स गुनाहों से बचता है, जब अल्लाह का अजाब याद आता है तो फिर गुनाहों से बचने की इंसान फिक्र करता है, कोशिश करता है, गुनाह की रगबत कम हो जाती है। गुनाह की रगबत जो है ना, रगबत यानी मायल होना किसी चीज की तरह, उसको रगबत कहते हैं। तो ये इंसान का जो नफ्स है ना, ये जितना मजबूत होगा ना उतना वो गुनाह की तरफ माइल हो कर सकेगा इंसान को, ठीक है। यानी जैसे पिछली क्लास के अंदर, पिछले हफ्ते बात हुई थी कि अगर नफ्स मजबूत होगा तो वो इंसान की अकल के ऊपर अपना असर डालेगा और अकल से ऐसे फैसले करवाएगा जो कि गुनाह वाले फैसले। जब नफ्स कमजोर हो गया तो फिर उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अकल को फोर्स करके उससे गुनाह वाले फैसले करवा सके। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर इंसान गुनाहों से बचना शुरू हो जाता है, क्योंकि अकल जो है वो उसके ऊपर आपका कल्ब असर डाल रहा होता है। ठीक है, जिसको कि आपने साफ किया, मजबूत किया, वो असर डाल रहा है कल्ब अकल के ऊपर। तो अकल जो है वो सही फैसले कर रही होती है, नेकी के फैसले कर रही होती है। नफ्स जो है वो कमजोर हो जाता है, तो वो गुनाह का असर नहीं डाल रहा होता, तो इस वजह से अकल गुनाह वाले फैसले क्यों करेगी। तबीयत हल्की रहती है, नींद कम आती है, तबीयत हल्की रहती है यानी आप फ्रेश 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 सा फील करते हैं। बहुत खाना खाने के बाद आपको पता है कि फिर कैलोरी की भी जरूरत पड़ती है, और ये खाना जो है ना, ये जब पेट के अंदर बहुत ज्यादा पड़ जाता है ना, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा खून की जरूरत पड़ती है, खून की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो बॉडी का ये निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है कि जहां पर खून की ज्यादा जरूरत होती है ना, तो बॉडी के बाकी हिस्सों से खून जो है ना वो उस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है, या जो हार्ट है वो खून को उस तरफ पंप करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इंसान के दिमाग को भी फंक्शन करने के लिए खून की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन जब पेट का काम ज्यादा बढ़ जाता है, स्टमक का काम ज्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी क्या करती है कि वो दिमाग से जो खून है ना उसको भी पेट की तरफ डायरेक्ट करना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है कि दिमाग के अंदर खून की कमी वाकई हो जाती है। ठीक है ना, यानी उतना ज्यादा खून दिमाग में नहीं रहता, बिल्कुल ये बिल्कुल जीरो नहीं हो जाता, वरना तो आप मर जाएंगे, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना खून नहीं रहता। तो इस वजह से ना दिमाग की फंक्शनिंग जो होती है वो कम हो जाती है। तो अब जो है ना वो यानी आप जो है वो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है उसके बाद। ठीक है, जब भी ज्यादा खाने के बाद देखें नींद आती है फिर उसके बाद। ठीक है, तो अगर हल्का खाएंगे तो उससे तबीयत जो है वो हल्की रहेगी, चलना फिरना भी जो है वो ज्यादा आसान रहेगा, और नींद भी कम आएगी। तहज्जुद और दूसरी इबादतों में सुस्ती नहीं रहती। ठीक है, ये जो एक मुसीबत पड़ी होती है ना कि जी सोते हैं तो सोते ही चले जाते हैं, हत्ता कि फजर कजा हो जाती है। ठीक है, तो उसकी एक रीजन ये भी होती है कि हम बहुत ज्यादा खाते हैं, जब बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसके बाद नींद भी जो है ना वो यानी जम करके आती है। हमारे हजरत फरमाते हैं कि डट के खाते हैं और जम के सोते हैं, डट के खाते हैं और जम के सोते हैं। ठीक है, तो हल्का खाएंगे तो कम नींद भी जो है वो कम आएगी। तहज्जुद और दूसरी इबादतों में सुस्ती नहीं रहती, जब नींद कम होगी तो फिर नमाज जो है वो पढ़ना आसान होगा, हत्ता कि तहज्जुद की नमाज भी पढ़नी आसान होगी। भूखों और आजिजों पर रहम आता है, बल्कि हर एक के साथ रहम दिली पैदा होती है। ठीक है, यानी जब दिल नरम हो जाता है ना तो फिर दूसरों के ऊपर रहम आता है, और फिर ये कि एक वो भी है कि जी जब खुद भूख लग रही होती है तो फिर दूसरे भूखों का ख्याल करिए, उनको कितनी तकलीफ होती होगी, जैसे मुझे तकलीफ हो रही है वैसे उनको भी होती होगी। किसी को कोई सवाल है ज्यादा खाने की हिर्स और उसका इलाज वाले मौजू के ऊपर? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला उनवान हजरत ने बांधा, ज्यादा बोलने की हिर्स और उसका इलाज। अब ये जो है वो बड़ा यानी खास इसका ताल्लुक है ख्वातीन के साथ, क्योंकि आम मुशाहिदा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ख्वातीन को अल्लाह ताला ने बोलने की जरा ज्यादा सलाहियतें अता फरमाई होती हैं, तो वो ज्यादा बोलती हैं। नफ्स को ज्यादा बोलने भी में भी मजा आता है, और इससे वो कई गुनाहों में फंस जाता है। ठीक है, जुबान जो होती है वो एक स्लिपरी चीज होती है, वो स्लिप बड़ी आसानी से हो जाती है, तो जब ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर उससे गलतियां भी ज्यादा होंगी, कम इस्तेमाल करेंगे तो गलतियां भी कम होंगी। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली। ठीक, तो बोलना एक ऐसी चीज है कि यानी ये भी गोया के ना खाने के मजे की तरह से बोलने बोलने के भी मजे होते हैं। ये भी हमारे हजरत फरमाते हैं कि जी कभी चुप के मजे भी ले लिया करो, चुप के मजे, ये चुप रहना ना इसके भी मजे होते हैं, लेकिन हमने इसको इसका कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, हमें बोलने में ही मजा आता है। तो आमतौर पर जिसका नफ्स मजबूत होता है तो उसको बोलने में मजा आ रहा होता है, और इससे वो कई गुनाहों में फंस जाता है। झूठ बोलना, किसी को ताना देना, अपनी बड़ाई जतलाना, ठीक है, अपनी तारीफों के पुल बांधना, जी मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, और मैं तो इतना अच्छा हूं, या मैंने तो कभी गुनाह किया नहीं, मैं तो बिल्कुल मुखलिस, मैं तो जो करता हूँ जी अल्लाह के लिए करता हूँ, मैं तो बस जी बस क्या बात है मेरी, ठीक है। तो ये होता है अपनी बड़ाई जतलाना, खुआ मखुआ किसी से बहस तकरार करना, खाम खा में बस होता है, बस शोशा छोड़ना है, बात करनी है, तो इस वजह से ना बस उल्टे सीधे जो है वो टॉपिक्स बाकायदा हमारे यहाँ छेड़े जाते हैं ताकि जरा बात करें और मजा आए। मालदारों की खुशामद करना, ये भी इंसान जुबान से ही करता है, जो मुआशरती तौर पर ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आते हैं, बड़े नजर आते हैं, तो ऐसे तारीफों के पुल उनके भी बांध रहे होते हैं, ठीक है, यानी बटरिंग कर रहे होते हैं, मक्खन लगा रहे होते हैं, तो ये भी जुबान से इंसान करता है। ऐसा मजाक करना जिससे किसी का दिल दुखे, इन सब आफतों से बचना जब ही मुमकिन है कि जुबान की हिफाजत की जाए, और उसकी हिफाजत का तरीका ये है कि जो बात कहनी हो तो वो जहन में आते ही ना कह डाले, बल्कि पहले खूब अच्छी तरह सोच समझ ले कि इस बात में गुनाह है या सवाब, या ये कि ना गुनाह है ना सवाब। अगर वो बात ऐसी है कि जिसमें गुनाह है तो बिल्कुल अपनी जुबान बंद रखो, ठीक है, यानी गुनाह तो हमारे सामने एक ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, गुनाह करना तो ऑप्शन ही नहीं है ना, कि जी चलो और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चलो गुनाह ही कर लेते हैं, है ना, कुछ और करने को नहीं मिल रहा तो चलो गुनाह ही कर लेते हैं, नहीं, गुनाह इज नॉट इवन एन ऑप्शन, गुनाह की कोई कोई आपके सामने ये नहीं है कि भाई चलो कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ ना सही तो नहीं, यानी ऐसा नहीं है, गुनाह की तो जीरो, यानी इल्म और इरादे से गुनाह करना इसकी तो जीरो पॉसिबिलिटी है ना ईमान वाले के लिए। अहियानन मजबूरन गुना हो जाना, तो वो उसको कहा जा सकता है कि हाँ भाई कमजोर थे और जो है वो अपने आप को नहीं बचा सके, फंस गए किसी सिचुएशन के अंदर, तो इस वजह से गुनाह हो गया, इसकी तो गुंजाइश निकल आती है, और ये भी गुनाह ही होता है, ये नहीं कि मजबूरी की वजह से किया तो वो गुनाह नहीं होगा, फंस करके किसी सिचुएशन में फंस करके गुनाह किया तो वो गुनाह नहीं होगा, नहीं, वो गुनाह होगा, लेकिन क्योंकि मजबूरन किया था, क्योंकि फंस के किया था किसी सिचुएशन के अंदर, तो उस गुनाह की माफी आसानी से हो जाती है, ठीक है ना, सोच समझ करके इल्म और इरादे से प्लान करके गुनाह करना, ये तो एक ईमान वाले की शान के ही खिलाफ है, ये तो एक ईमान वाले की जिंदगी में ये हो ही नहीं सकता, जब भी साहब हमें ये चीज बड़ी मुश्किल लगती है ना, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक एक मोमेंट से कि वो इल्म और इरादे के साथ गुनाह ना करे, ये कम से कम रिक्वायरमेंट है, और सहाबाए कराम जो है वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा उतरते हैं, ठीक है, वो इल्म और इरादे के साथ गुनाह नहीं करते थे, ठीक है, उनके लिए जो है ना ये ऑप्शन नहीं था कि जी मजे के लिए गुनाह कर लिया है, तफरी में गुनाह कर लिया, ऐसी जो है ना बस वो शुगल के अंदर गुनाह कर लिया, कुछ करने को नहीं मिल रहा था तो चलो गुनाह कर लिया, नहीं, ये सहाबाए कराम के सामने ये ऑप्शन नहीं था, हमारे सामने ये बड़ा ओपन सा एक ऑप्शन है ना, कुछ नहीं करने को मिला तो चलो गुनाह कर लो, ठीक है, तो वजह से जुबान खोलने से पहले सोच समझ लो, इसको कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है, अगर गुनाह वाली बात है तो तोलने के अंदर तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि ये गुनाह वाली बात है, ठीक है, तो उस वक्त तो अपनी जुबान को बंद रखो, इसकी मत समझना, तो चलो कोई बात नहीं आ गई है तो बस आ गई है, तो अब अंदर तो मैं निगल नहीं सकता है इसको, तो चलो बाहर ही उगल दो, है ना, निगल तो सकता नहीं, हराम चीज है ना ये, गुनाह वाली बात जो है ये तो हराम है, और हराम बात तो हराम चीज को खाना जो है वो मना है, तो चूंकि मैं अंदर तो नहीं रह सकता हराम चीज को, तो चलो बाहर निकाल दो, नहीं भाई ये खाने की चीज नहीं है, ठीक है, ये तो सोच है, ये एक ख्याल है जो कि आपके मुंह के अंदर आकर के फंस गया है, अब इसको जो है ना वो आप अंदर निगल लें, अंदर निगलना ये नेकी का काम होगा, बाहर बाहर निकालना, उगलना जिसको उगलना कहते हैं, ये यानी यहाँ पे उल्टा मामला चलता है, यहाँ पे उल्टा मामला चलता है। जो हराम गिजा होती है ना उसको अंदर लेना हराम है, उसको भारी रखो भाई, अंदर नहीं ले सकता मैं। लेकिन जो हराम सोच होती है ना उसको, उसके साथ उल्टा मामला है, उसको अंदर रखो, बाहर मत निकालो उसको, उसको बाहर नहीं निकालो, उसको उगलो नहीं, ठीक है? तो अंदर उसको रखोगे तो ये नेकी का काम होगा, बाहर निकालोगे तो वो गुनाह का काम होगा, ठीक है? एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, वाले साहब को जरा देखेंगे। तो बिल्कुल अगर अंदर से नफ्स तकाजा करे तो उसको इस तरह समझाओ कि इस वक्त थोड़ा सा सब्र कर लेना आसान है, मगर दोजख का अजाब बहुत सख्त है, और अगर वो बात सवाब की है तो कह डालो, और अगर ना गुनाह है ना सवाब है तो भी मत कहो, ठीक है? यानी कोई ऐसी चीज है ना जिसमें ना गुनाह है ना सवाब है, न्यूट्रल सी एक बात है, तो बेहतर तो यही है कि उसको भी मत कहो, ठीक है? और अगर बहुत ही दिल चाहे तो थोड़ी सी बात करके खामोश हो जाओ, ठीक है? यानी कोई न्यूट्रल सी जो बात है ना, जिसका कोई यानी ना 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 गुनाह नजर आ रहा है ना सवाब नजर आ रहा है, तो एहतियात का तकाजा, एहतियात का तकाजा ये है कि इवन वो वाली बात भी जो है ना वो कम की जाए, ठीक है? ज्यादा बोलना, बेशक कोई न्यूट्रल सी बात भी है ना तो वो भी ज्यादा बोलने में फिर क्या होता है कि शैतान इंसान से गलती करवा देता है, और जब जुबान चल रही होती है ना, फ्लो जब हो रहा होता है ना, तो फ्लो में फिर यानी चलती हुई चीज को रोकना मुश्किल हो जाता है। जो चीज पहले से रुकी हुई है तो उसको रोके रखना आसान काम है, लेकिन जो चीज चल रही है तो उसको रोकना मुश्किल काम है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना, जो चीज चल रही है उसको रोकना मुश्किल काम होता है, जो चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई है, ठीक है? तो जुबान जब रुकी हुई है तो एहतियात ही, यानी उसी के अंदर फायदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन समता नजा, जो खामोश रहा वो बच गया, जो खामोश रहा वो बच गया, वो निजात पा गया, नजा, नजा मतलब निजात पा गया, ठीक है? और जिसने बोला ना तो फिर या तो वो अच्छी बात बोलेगा या वो बुरी बात बोलेगा, ठीक है? तो बुरी बात बोलना, ठीक है, वो उससे उसका तो नुकसान होता है। हर बात इसी तरह सोच समझ कर करते रहेंगे तो थोड़े दिनों में बुरी बात कहने से खुद ही नफरत हो जाएगी। अब यहाँ पर एग्जाम में सवाल आता है कि भाई हमें तो आदत पड़ी हुई है, ठीक है, और हम तो बचपन से जो है वो बोल रहे होते हैं, तो हमने तो कभी सोचा नहीं इस तरह से, तो हम इस आदत को कैसे खत्म करें? तो आदत को चेंज करने का क्या तरीका होता है? आदत को चेंज करने का तरीका ये होता है कि जो आप जो तब्दील करके कोई नई आदत बनाना चाहते हैं ना, तो जब आप के लिए मुमकिन हो आप वो नया वाला काम करें, ठीक है? जब आपको याद आ जाए आप वो नया वाला काम करें, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जो पुरानी आदत बनी हुई है ना, ये शुरू में तो लगेगा कि जैसे नामुमकिन है आदत को छोड़ना, लेकिन जब आप अपने आप को फोर्स करते रहेंगे, या ये कि इवन दूसरों से भी इसके अंदर मदद ली जा सकती है कि मेरी तो ये आदत बनी हुई है, मुझसे तो जो है ना वो तो अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं किया जाता, तो आप जब मुझे देखें ना कि मैं बेलगाम बोले जा रही हूँ या मैं कोई फजूल में जो है वो बातें कर रही हूँ, तो आप मुझे याद दिला दिया करें, आप मुझे जो है ना वो टोक दिया करें, इशारा कर दिया करें, अपने हाथ से इशारा कर दिया करें ताकि मुझे याद आ जाए। मैं बोलना शुरू होती हूँ ना तो मैं सब भूल जाती हूँ, आप मुझे इशारा कर दिया करें, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ना, फिर जब इंसान अपने आप को यानी फोर्स करता है ना, तो फिर उसकी वो पुरानी आदत जो है वो चेंज हो जाती है और नई आदत उसके अंदर पैदा हो जाती है। और नई आदत क्या पैदा करनी है? खामोश रहने की, ज्यादा खामोशी की आदत ये पैदा करनी है, ठीक है? तो आदतें जो है ना, ये अगरचे के मुश्किल होता है इनको चेंज करना, लेकिन नामुमकिन नहीं होता, ठीक है? तो इस तरीके से हजरत ने फरमाया कि थोड़ा अरसा आप सोच समझ के करते रहेंगे ना तो फिर पुरानी आदत जो है वो खत्म हो जाएगी, नई आदत शुरू हो जाएगी, बल्कि उस पुरानी आदत से जो है वो नफरत ही हो जाएगी, क्योंकि आप उसको जो छोड़ रहे हैं तो बुरा समझ के छोड़ रहे हैं ना। तो जब किसी चीज को बुरा समझ के छोड़ रहे होते हैं तो फिर उसकी नफरत दिल के अंदर पैदा हो जाती है, और जब दिल के अंदर किसी चीज की नफरत आ जाए तो फिर दिल तो फिर आपको पता है बादशाह होता है। तो बादशाह सलामत तो अगर किसी चीज से नफरत करते हैं तो फिर वो चीज तो नहीं रह सकती ना। जुबान की हिफाजत की एक तदबीर ये भी है कि बिला जरूरत किसी से ना मिलो, तन्हाई में खुद ही जुबान खामोश रहेगी। ठीक है, यानी जाहिर है कि जुबान का इस्तेमाल कब होता है, जब आप लोगों के साथ होते हैं। ठीक है, तो जब आप लोगों से मिलना जो नहीं कम करेंगे तो फिर जुबान का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। अपने आप में बोलना, ये तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपने आप से ही बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखें ये एक सोच है। अब ये टाइम तकरीबन खत्म हो गया क्लास का, तो अब यहाँ पर एक और बात जहन में आ गई कि ये जो है ना कि कम लोगों से मिलो, किल्लते इख्तिलात, इख्तिलात कम करो, इंटरेक्शन कम करो, ये सोच जो है वो हमारा दीन देता है। ठीक है, हमारा दीन ये वाली सोच देता है, जबकि इसके बरक्स जो दुनिया वाले हैं, यानी जो दीन के खिलाफ जो लोग होते हैं, काफिर हैं या फासिक हैं, तो उनके यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट सोच है, ज्यादा इंटरेक्शन। उसके लिए एक बाकायदा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है सोशलाइजिंग, सोशलाइजिंग, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना। ठीक है, तो फासिक और काफिर, इनके यहाँ सोशलाइजिंग जो है ना, ये एक बहुत यानी आला चीज है, ये बहुत अहम चीज है। ठीक है, और ये इतना भी इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि दीन को भी जो है ना वो एक सोशलाइजिंग के तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कि दीन भी जो है वो हमारा सोशलाइजिंग करने को कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा दीन जो है ना ये सोशलाइजेशन को पसंद नहीं करता। ठीक है ना, ये बहुत ही खास मकसद के साथ सोशलाइजेशन को पसंद करता है, वरना ही पसंद नहीं करता। हमारा दीन किसी बहुत ही खास मकसद, बल्कि आला मकसद के लिए सोशलाइजेशन को तो पसंद करता है, लेकिन उसके अलावा पसंद नहीं करता। वो क्या मकसद है? वो मकसद है दावत और तबलीग। ठीक है ना, दीन की दावत और तबलीग, उसके लिए तो सोशलाइजेशन को ये पसंद करता है, वरना हमारा दीन पसंद नहीं करता। तो हमारा दीन जो है ना वो सोशलाइजेशन को यानी एक बुरी चीज के तौर पर देखता है, लेकिन दुनिया वाले जो है वो सोशलाइजेशन को जो है ना वो बहुत अच्छी चीज के तौर पर देखते हैं। इसी वजह से जब ऐसे लोगों को कहा जाए ना कि जी बच्चों को जो है वो बुरे माहौल से बचाने के लिए आप उनको स्कूल के माहौल से दूर रखें और होम स्कूलिंग की तरफ लेकर के आए, या प्राइवेट तरीके से जो है वो उनको तालीम वगैरह का उनका इंतजाम करें, तो सबसे बड़ी मुसीबत इन लोगों को क्या पड़ती है कि फिर बच्चे सोशलाइज कैसे करेंगे, हमारे बच्चे फिर सोशलाइज कैसे करेंगे, है ना। उनकी सोशलाइजेशन जो है ना वो खत्म हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है ना वो कुछ अजीबो गरीब किस्म के जानवर बन जाएंगे, है ना। और जब वो जानवर बन जाएंगे अजीब गरीब किस्म के, तो फिर उसके बाद जो है ना वो उनकी जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये एक आम एतराज है जो के लोग जो है ना वो फिर होम स्कूलिंग के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा पहली बात तो ये ऐसा होता नहीं, आप जब अपने बच्चों को होम स्कूल करवाते हैं तो आप उसके उनके लिए जो है ना फिर नेगेटिव सोशलाइजेशन के मुकाबले में आप उनके लिए पॉजिटिव सोशलाइजेशन का इंतजाम करते हैं, उसके बगैर होम स्कूलिंग हो नहीं सकती। जिसको के पॉजिटिव सोशलाइजेशन करना ना आती हो तो वो उसके लिए होम स्कूलिंग करवाना अपने बच्चों को इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि भाई सोशलाइजेशन जो है ना ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर सूरत में आपने सोशलाइजेशन करनी, नहीं, इसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके लिए भी जो है वो एहतियात है। ठीक है, कि भाई पॉजिटिव सोशलाइजेशन आपके बच्चे के लिए फायदेमंद है, नेगेटिव सोशलाइजेशन जो है वो आपके बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा जहन बना दिया गया है इस निज़ाम के अंदर, जो कि काफिरों का बनाया हुआ निज़ाम है, फासिक फाजरों का बनाया हुआ और चलाया हुआ निज़ाम है, कि बस चाहे जेक सोशलाइजेशन हो बस जरूरी है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो फिर ऐसी सोच के साथ फिर उनका गुजारा जो है वो फिर गुनाहों के साथ ही हो रहा होता है, और जिसका गुजारा फिर गुनाहों के साथ हो रहा हो तो फिर उसके साथ फिर मरने के बाद भी और मरने से पहले भी फिर अल्लाह के अजाब वाला ही मामला होता है। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्होंने कुछ लिखा है, एक सवाल तो वो पढ़ लेते हैं कि मैं भी जो है वो लोगों के साथ डील करने में जो है ना वो बहुत बुरी थी, और जब मैंने लोगों से जो है वो दीन की नीयत से बात करना शुरू करी ना, तब जो है वो मेरा ये इंटरेक्शन भी जो है वो, यानी मेरी जो एबिलिटी टू इंटरेक्ट थी लोगों के साथ, वो एबिलिटी भी बेहतर हो गई। ठीक है, बेशक, ठीक है। आप यानी लोगों से, एक होता है ना लोगों को वही वो बातचीत करने का शौक है, और देखते हैं कि भाई दूसरे लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमें भी बातचीत करनी चाहिए। भाई हर एक की तबीयत होती भी नहीं ऐसी कि लोगों के साथ जो है वो चुटकुले छेड़ना और लोगों के साथ जो है वो उल्टे सीधे मजाक करना हर एक को अल्हम्दुलिल्लाह आता भी नहीं है। लेकिन जब लोगों की कंपनी में बैठे हुए होते हैं, किसी दावत में गए हुए होते हैं, और वहां पे हर कोई एक दूसरे के साथ चुटकुले छोड़ रहा होता है, तो ऐसी तबीयत वाले भी जो है ना उनको भी अंदर से कुछ 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 होना शुरू हो जाता है कि मैं भी क्यों, मैं भी करूं, मैं भी जो है ना वो फेमस बन जाऊं, मैं भी जो है वो पॉपुलर बन जाऊं, मैं भी जो है ना वो इस किस्म के चुटकुले छोड़ने वाला बन जाऊं, लोग मेरी बात को भी एंजॉय करें, मेरी बात पर भी हंसें, तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, लेकिन बेचारों को करना आता नहीं है। तो अब जो है ना ये जब उल्टी सीधी कोई बात करते हैं लोगों को हंसाने के लिए, लोगों का के साथ बातचीत करने के लिए, तो इनका मजाक उड़ता है फिर, है ना, लोग हंस
जैसे
उल्टा जो है वो इनके
ऐसा
हैं। तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान ही होता है। तो अल्लाह के दीन की खातिर बात करें ना, तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल हो जाती है। जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है, तो फिर इंसान को बातचीत करने का सलीका भी आ जाता है। ये बात बहुत बड़ा मसला समझ आती है कि बच्चा दूसरे बच्चों से बात नहीं कर रहा। जी, जाहिलों के नजदीक तो बहुत सारी चीजें बहुत कुछ समझी जाती हैं जो कि होती नहीं है। ठीक है ना, जैसे मेरा बच्चा जो है ना वो मैथ नहीं समझ रहा, तो अब जो है ना वो उसको डंडे मार करके, उसके पीछे पड़ करके, उसके ऊपर ट्यूशनें लगा लगा करके उसको जो है ना वो मैथ किसी तरीके से घोल के पिलानी है। ठीक है ना, या अब मेरा बच्चा जो है वो फलानी चीज जो है वो नहीं कर रहा, तो अब उसको डंडे मार मार करके, प्रेशर कर करके, और लान तान कर करके, और उसके ऊपर जो है वो उसको दूसरे बच्चों से कंपेयर कर करके, है ना, कि देखो वो कितने अच्छे से ये काम कर रहा है, वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। बस बच्चों को जो है ना वो बाय हुक और बाय क्रुक जो है ना वो चीजें हमने उनके अंदर घुसेड़नी होती। कोई बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से बात नहीं कर रहा, उसकी दूसरी किस्म की पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, आउटवर्ड एक्सट्रोवर्ट नहीं होती। अब उसको जो है ना वो सलावातें सुना सुना करके और बुरा भला कह कह करके उसको बातें करने के ऊपर उकसा रहे होते हैं। तो ये जहालत है, जहालत। ये लाजमन 100% भी नहीं, 200% ये जहालत है। ठीक है, जिसकी भेंट जो है वो हम खुद भी चढ़ चुके हैं, हमारी पूरी पूरी नस्लें जो है वो इस जहालत की भेंट चढ़ चुकी हैं, गुजर चुका है हमारे साथ ये सारा का, और इसी जहालत की भेंट जो है ना वो हम अपनी आने वाली नस्लों को भी चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस जहालत से निकलने की जरूरत है। ठीक है, इस बात को समझें कि अल्लाह ताला ने जैसा मिजाज बनाया होता है, जैसी जो है वो सलाहियतें बच्चे को दी होती है ना, उन सलाहियतों को आप आइडेंटिफाई करें कि उसके अंदर किस चीज की सलाहियत है, और उस चीज की जो सलाहियत, जिस चीज की सलाहियत अल्लाह ने रखी है ना उसके अंदर, उसको खैर के लिए इस्तेमाल करने का तरीका सीखें और उसको सिखाएं। ठीक है ना, हर चीज सिखाने की और हर चीज पढ़ाने की और सब कुछ बताने की और सब कुछ करवाने की, ये जहालत वाली सोच से जो है ना वो हमें बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, इन जाहिलों के पीछे भाग करके जो है ना वो खुद भी, यानी जिस तरह वो जहन्नुम की तरफ भाग रहे हैं, उसी तरह हम भी उन्हीं के पीछे पीछे जो है ना भागेंगे, तो हम भी जहन्नुम जहन्नुम ही का फिर ईंधन बनेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, तो कुछ सोचें, कुछ समझें, इन चीजों को उड़ा मत दिया करें। इधर से क्लास में बात सुनी, और उसके बाद जो है वो खानदान में वापस गए, और वहां पे फिर वही जाहिलों की बातें सुन करके फिर उन्हीं के रास्ते के ऊपर फिर से चलना शुरू हो गए। ठीक है ना, ये औलाद जो दी गई है ना, इसका हिसाब होगा हमसे, इसका हिसाब होगा हमसे। ठीक है ना, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करें। यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, और 2-4 मिनट की ब्रेक लेकर के फिर मिसाली सास की क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।